This is an ABP Life podcast.
छह दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को राजद्रोह कानून के अंदर आने वाले सभी केसेस को थामने के लिए कहा। जितनी भी ट्रायल्स, प्रोसीडिंग्स, सुनवाई इंडियन पीनल कोड की धारा सेक्शन 124 ए के तहत होने वाली थी, उन सभी को रोकने के आदेश दिए जब तक केंद्र अपना वादा नहीं निभा लेता। कौन सा वादा? आईपीसी की 124 ए पर पुनर्विचार करने का वादा और उसमें जरूरी बदलाव करने का वादा। मगर ये कब हुआ? क्यों सुप्रीम कोर्ट चाहता है सेडिशन के कानून में बदलाव? क्या होता है सेडिशन यानी कि राजद्रोह का कानून? क्या कहता है ये कानून और आखिर क्यों अब तक केंद्र नहीं निभा पाया बदलाव लाने का वादा? इन सभी पेचीदा सवालों के जवाब जानेंगे आज के FII पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वही पुरानी आपकी होस्ट साहिबा खान और आप सुन रहे हैं ज्ञान के भंडार वाला फेवरेट पॉडकास्ट FYI ओनली ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। आज थोड़ा दिल थाम कर बैठ जाएं क्योंकि आज बात होने जा रही है एक ऐसे कानून की जिसने दशकों से भारत में डर बरपाए रखा है, जो हमारा नहीं बल्कि अंग्रेजों को हमें दी गई सौगात थी, जिसे वैसे तो हमें आजादी के समय ही हटा देना चाहिए था मगर कुछ कारणों से नहीं हटाया। आज हम बात करेंगे IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड की धारा 124 ए यानी कि सेडिशन लॉ की, बोले तो राजद्रोह कानून। अब इसी कानून में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव करने को कहा है और आपको बताती चलूं कि जो BJP सरकार इस कानून की सरपरस्त हुआ करती थी कुछ समय पहले तक, और इसी कानून के तहत कई लोगों को जिसने जेल में भी डाला, और सिर्फ भाजपा ने ही नहीं बाकी और सरकारों ने भी इस कानून के तहत कई लोगों को जेल के अंदर डाला है, उसी कानून पर कोर्ट की फटकार के बाद BJP का कहना है कि वो इसमें बदलाव या सुझाव या परामर्श या बेसिकली एक जो एक प्रोसेस है इस कानून पर सोचने का, वो शुरू करेंगे। मगर सबसे पहले जानते हैं कि ये सेडिशन लॉ होता क्या है। IPC की धारा 124 ए कहती है कि whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law shall be punished with imprisonment for life to which fine may be added। बहुत अंग्रेजी हो गई, बहुत लॉ हो गया, आपको सिंपल हिंदी भाषा में समझाती हूँ क्या बोला है। तो भाई IPC की धारा 124 ए का ये कहना है कि जो कोई भी शब्दों द्वारा या तो बोलेगा या लिखित या संकेतों द्वारा या साक्षात दिख रहे प्रतिनिधित्व द्वारा घृणा यानी कि नफरतें फैलाने का या अवमानना माने बात ना सुनना ये काम करता है अगर, या सामने वाले को प्रोवोक यानी कि उत्तेजित करता है, या कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लोगों में असंतोष पैदा करने की कोशिश करता है, उसे दंडित किया जाएगा आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है। अब समझे? तो ये है देशद्रोह कानून के शब्द संविधान के अनुसार। इस प्रावधान में तीन और एक्सप्लेनेशन जोड़े गए हैं। पहला, डिसअफेक्शन शब्द जो असल कानून में इस्तेमाल किया गया है उसमें डिसलॉयल्टी यानी कि गद्दारी और दुश्मनी भी शामिल होगी। दूसरा, अगर किसी ने कुछ ऐसा कहा जो सरकार की नीतियों या उनके प्रयासों की निंदा करता है इस उद्देश्य से कि वो कानून या फिर वो नीति दूसरों के हित के लिए कानून के दायरे में रहकर बदली जा सके बगैर नफरतें या फिर असंतोष फैलाए, तो वो सभी इस कानून की श्रेणी में नहीं आएगा। और तीसरा और आखिरी विवरण है कि अगर किसी ने सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया या असंतोष जताया नफरत फैलाए बिना या फिर किसी को उत्तेजित किए बिना, तो उसे भी इस कानून से बाहर रखा जाएगा। मगर ये कानून आखिर आया कहां से? चलिए इसके इतिहास में थोड़े गोते लगाते हैं। ये कानून थॉमस मकॉले नाम के अंग्रेज के दिमाग की उपज थी। उसी ने इंडियन पीनल कोड भी बनाया था जिसके अंदर ये धारा डाली थी। 1860 में जब ये IPC लगाया गया, जब इंडियन पीनल कोड लगाया गया हमारे देश में, तब किसी भूल चूक से देशद्रोह वाली जो धारा है वो उसमें वो लगाना भूल ही गए। मगर 1890 में स्पेशल एक्ट 17 लगाकर इसे IPC की धारा 124 ए के तहत ऐड कर दिया गया। इसमें आपको उम्र कैद की सजा हो सकती थी। इसे अंग्रेजों ने लगाया था ताकि उनके खिलाफ जो बगावत हो रही है उस पर काबू पाया जा सके। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे सबसे बेहतरीन फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसांत, शौकत और मोहम्मद अली, मौलाना आजाद और सभी को देशद्रोह कानून के तहत सजा सुनाई गई थी। जी हाँ, 1898 में क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक के केस की सुनवाई हुई थी, जो काफी मशहूर रही और इतिहास के पन्नों में जिसका नाम आज तक दर्ज है। उसके बाद आजाद भारत में भी ये कानून रहा और कई बार सरकारों ने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया उन लोगों को जेल में पहुंचाने के लिए जो सरकार या उसकी नीतियों की निंदा करते थे। कई बार अदालतों ने इस कानून के तहत बदलाव लाने की बातें कही और ये भी कई बार अपने बयानों में बोला कि केवल सरकार या उसकी नीतियों की निंदा करना इस कानून के तहत नहीं आता। कभी सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में यही बात कही, तो कहीं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने तारा सिंह गोपी चंद वर्सेस द स्टेट 1951 में यही दोहराया। यहाँ तक कि राम नंदन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1959 के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया कि आईपीसी की धारा 124A मुख्य रूप से अंग्रेजों के लिए देश में असंतोष और डिसेंट यानी कि असहमति को दबाने का एक उपकरण टूल थी। और फिर अदालत ने इस प्रावधान को असंवैधानिक भी घोषित किया। हालांकि 1962 में सुप्रीम कोर्ट के केस ने इस कानून में काफी उलझने पैदा कर दी एंड दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में इस धारा के तहत सजा सुना दी, मगर साथ ही साथ सरकारों को ये भी नसीहत दी कि वो उसका दुरुपयोग करने से बचें। अदालत ने जोर दिया कि हर भाषण या कमेंट जो सरकार की निंदा करता हो या फिर अपना असंतोष बयान करता हो वो देशद्रोह नहीं हो सकता जब तक उस बयान से अफरा तफरी ना मच रही हो या फिर कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आ रही हो, मतलब पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, यही बेसिक था। आपको बताती चलूं कि ये पब्लिक ऑर्डर की बात कानून में कहीं नहीं लिखी गई है, मगर कई बार अदालतों ने ये कहा है, इसीलिए अभी एक नॉर्म बन गया है कि अगर ऐसा हो रहा हो तभी आप किसी बयान को देशद्रोह में काउंट कर सकते हैं। और इसी केस के बाद से पब्लिक ऑर्डर एक बहुत बड़ा शब्द बन गया आगे इस कानून के तहत आने वाले केसेस में। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो 1995 का एक केस था, उसमें कहा गया कि किसी भी बयान को सेडिशन या देशद्रोह मान लेने से पहले सही से आंकना चाहिए कि लोग ये क्यों कह रहे हैं। डॉक्टर विनायक विनायक सेन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जो 2011 का केस है, उसमें फैसले में ये कहा गया कि भले ही आपने वो स्पीच या वो बयान नहीं लिखा हो, मगर अगर आप उस बयान को सर्कुलेट करते भी पकड़े गए तो देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। भारत के लॉ कमीशन और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की लगातार कई रिपोर्टों में राजद्रोह कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर जोर दिया। केदारनाथ वाले मामले में तो पुलिस पर आरोप लगा कि वो पहले देखें कि जिस बयान की वजह से आईपीसी की धारा 124A लगा रहे हैं वो सही में इसके अंतर्गत आता भी है या नहीं। पिछले साल की ही बात है, विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देख ले। दिवंगत पत्रकार विनोद दुआ पर देशद्रोह कानून के अंतर्गत आरोप लगा कि उन्होंने आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बोला कि उन्होंने कोविड-19 महामारी को भारत में सही से नहीं संभाला। हालांकि अदालत ने उनके खिलाफ सभी एफआईआर रद्द कर दी थी और कहा था कि ऐसा कोई भी केस उनके खिलाफ नहीं बनता। तो इस कानून की अब स्थिति क्या है, हम कहां पर हैं? तो किशोर चंद्र वांगखेमचा, कन्हैया लाल शुक्ला जैसे कई और बड़े पत्रकारों ने और तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा ने इस कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की। इसमें 7 जज बेंच ये फैसला लेगी कि क्या केदारनाथ केस में जो ऑब्जर्वेशंस किए गए थे वो सही थे भी या नहीं, या उस केस में सही तरीके से क्या सुनवाई की गई थी या नहीं, जो फैसला आया था वो सही था या नहीं। हालांकि सरकार ने पहले तो कहा कि कुछ केसेस में इस कानून का दुरुपयोग का मतलब ये तो नहीं कि इस कानून को हटा ही दिया जाए, मगर फिर केंद्र भी इस पर राजी हो गया कि इस कॉलोनियल कानून पर सलाह मशवरा उन्हें मंजूर है। अब अदालत का हस्तक्षेप इस केस में बहुत जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि अगर अदालत इस प्रावधान को रद्द करता है तो उसे केदारनाथ वाले फैसले को रद्द करना होगा और पहले के फैसलों को बरकरार रखना होगा, उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, वो पहले के केसेस जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को तवज्जो दी गई थी। हालांकि अगर सरकार कानून पर सोच विचार करने का निर्णय लेती है तो ये भी हो सकता है कि या तो भाषा को तोड़ मरोड़ कर बात वही रह जाए और प्रावधान को दोबारा नए सिरे से सोचने का पॉइंट ही नहीं रहेगा, और इस वजह से इस प्रावधान को दोबारा नए सिरे से सोचने का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये सोच विचार परामर्श इस कानून को कहां तक लेकर जाते हैं, क्या ये रद्द हो जाएगा, क्या अदालत पूरा का पूरा कानून ही रद्द कर देगी या फिर सरकार को मौका देगी वो इसे दोबारा बेहतर तरीके से फ्रेम करे। हम आपको बताते रहेंगे, हमें बताएं कि आपको क्या लगता है आजाद भारत में कितना जरूरी है ऐसा अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून। हमें बताएं एबीपी लाइव पॉडकास्ट के ट्विटर हैंडल पर। फिलहाल मैं चलती हूँ, मैं हूँ साहिबा खान, पॉडकास्ट की साउंड डिजाइन की है ललित ने, और आप सुन रहे थे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI, बोले तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।
हर पल बदलती दुनिया में कोई अपडेट मत करो मिस। डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।